لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب کی اور اس میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی روزے میں جتنی دیر آپ رہتے ہیں وہ سارا ٹائم عبادت ہے مثلاً 13-14 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو سوچیں اتنی دیر میں کوئی نہ تو نماز پڑھ سکتا نہ قرآن پڑھ سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرما کے مسلسل عبادت میں ہمیں رکھ دیا اور اس کا ہمیں ثواب ملتا رہتا ہے تو ہمیں اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا اسی طرح قیام اللیل ہے اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں ایز لانگ ایز آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بھی ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اگر اس کو پانے کا موقع مل گیا تو اس پہ بھی شکر ادا کریں کیونکہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا کل ہی ایک سسٹر نے شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں مگر کمر درد کی وجہ سے نہیں کر سکتی اور اس وقت ان کو جوانی کے وہ دن یاد آ گئے جس وقت ہمت تھی مگر غفلت کی وجہ سے نہیں کیا تو یہ بھی نعمتیں ہیں کہ ہمیں نیکی کی کوئی توفیق مل جائے کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی ہم نیکیوں کو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ابھی کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی شاید کر سکتے ہوں گے تو بعد میں کر لیں گے مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ بعد میں یہ چانس رہے گا زندگی کی مہلت ملے گی یا صحت اتنی رہے گی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت کو فرمایا کہ غنیمت جانو بیماری سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے تو اگر ہماری سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے اسی لیے آپ سب کو چاہیے کہ اگر آپ چند پیسے دے کے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی عورت رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں کیونکہ صفائی کوئی اور کر سکتا ہے مگر یہ نیکیاں آپ کی جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھوڑی اپنی عید کی شاپنگ میں سے کمی کر لیں مگر اس وقت کوئی ہیلپ ضرور لے لیں تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ باقی چیزوں میں ہی لگے رہیں اور عبادت میں آپ زیادہ وقت نہ گزار سکیں کیونکہ یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں رمضان کا ہر لمحہ جو ہے نا ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر گھنٹہ جو ہے وہ قیمتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ایسی کوئی بھی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا تو ہر سیکنڈ ہی عبادت ہے ہر سیکنڈ رحمت ہے ہر سیکنڈ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے لوگوں کو اس کے ہر دن ہر گھنٹے میں مغفرت کی ہمارے پاس چانس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ عشرہ اس چیز کا یہ عشرہ اس چیز کا پورا مہینہ ہی بڑا بابرکت ہے اب یہ جو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا اپنے دن کو اس کو ہم نے اب ڈیکوریٹ کرنا اور یہ ڈیکوریشن جیسے میں نے آپ کو وہ حصے بتائے تھے اس کو جو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمیں دن میں یاد رہے اب ظاہر ہے آپ اپنے کوئی نوٹس تو کھولیں گے نہیں یا یہ صبح کا لیکچر بھی ایسا یاد نہیں رہے گا تو ہم نے یا تو کہیں لکھ کے لگا لیں ہم کہ ہم نے کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے تاکہ ہمارا پورا دن پلانڈ ہو اور پورا دن ڈیکوریٹڈ ہو جیسے کہ فجر سے اشراق کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اگر بچوں نے اسکول جانا ہے تو ہم سحری کے وقت ہی ان کا ناشتہ بنا کے رکھتے ہیں ان کا لنچ بنا کے رکھتے تاکہ ہمیں اٹھنا نہ پڑے اس کے بعد کوشش سے ہماری چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو الگ بات ہے لیکن ادروائز بہت سارے ہمارے پاس دیکھیں چانسز ایسے ہیں کہ ہم الحمدللہ ان سے فائدہ اٹھا کے اور اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں اب یاد رکھیے گا 3 مواقع ایسے ہیں 3 گھنٹے ایسے ہیں جو بہت قیمتی ہیں آپ کے دن کے इनकी लाजमी है आपने हिफाजत करनी। ये 3 घंटे दिन के कौन से हैं? यही 3 घंटे रमजान के अंत तक 90 घंटे हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट तरीन आपके दिन के जो मैं आपको औकात बता रही ना, इनको जरूर जहन में रखें। पहला घंटा कौन सा है? ये जो रात का आखिरी घंटा है, इसके अंदर अपने रब के आगे सजदा में जाएं, हाथ उठा के दुआएं करें, नफल पढ़ें, जो कुछ भी करें, ये कबूलियत का वक्त है। इसको आपने ज़ाया नहीं होने देना। ये आपका स्टार्ट है, यानी दिन का आप समझ लें, इसको मैं कहती हूँ सहरी का वक्त कह लें, तहज्जुद का वक्त कह लें, ये बहुत कीमती है। दूसरा घंटा जो आपका फजर की नमाज से लेके सूरज के निकलने तक, इस पे भी आपने मुसल्ले पे बैठना है और अल्लाह ताला का जिक्र करना है, ये भी बहुत कीमती है। और तीसरा घंटा आपका इफ्तार का, इफ्तार अगर मिसाल के तौर पे हमारे लिए 7 बजे इफ्तारी का टाइम है, तो हम 5 से 6 बजे के दरमियान हम इफ्तारी बना लें और उसको रख दें टेबल पे, ताकि हम 6 से 7 वाला जो घंटा है उसको दुआओं में गुजारें। ठीक है, अब गरम गरम खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है आप ओवन में रखते हैं, तो मुझे नहीं पता, अब ये जो बहुत खानादारी की माहिर ख्वातीन है वो ही बता सकती हैं, शायद इतनी लज्जत ना आए, लेकिन ये कीमती तरीन घंटा है, इसको नहीं हमने ज़ाया करना। चलें आप घंटे को छोड़ दें, आधा घंटा ही ले लें। अब आप इसको, इन 3 घंटों को हाफ एन आवर भी बना सकती हैं अगर आप नहीं कुछ कर सकती, मगर प्लीज इनको जाया नहीं करना। ये घंटे बहुत ही कीमती घंटे हैं। अब आपने जब फजर की नमाज पढ़ ली, तो इशराक तक आपने कैसे डेकोरेट करना है? आपने सुबह शाम की दुआएं करनी। सबसे पहली तो ये बात जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस का जितना भी मैं एम्फोसाइज करूं कम है। असलाफ हमारे कभी ये सुबह शाम की दुआएं नहीं छोड़ते थे। एक ये फजर के बाद पढ़नी है और एक ये असर के बाद पढ़नी है, फिर उसके बाद जितना हिस्सा कुरान में से आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। तो ये वक्त मशहूद वक्त है, इस वक्त फरिश्ते, आपको पता है इनकी ड्यूटी चेंज होती है, वो जमा होने का उनका टाइम है, एक नए टीम आती है और जो पहले रात से आपके साथी वो चली जाती है। दूसरा हिस्सा जो इशराक से लेके जुहर तक है, इसमें आप थोड़ी देर सोना चाहें सो सकते हैं, लेकिन याद रखिए रमज़ान में जब भी आप सोने लगे, क्योंकि हम ऑल टाइम्स पे सोएंगे, अगर कोई दिन में नहीं भी पहले सोता था इस टाइम पे तो अब सोना चाहेगा, क्योंकि कब से तहज्जुद से उठे होंगे, तो अलार्म लगा के सोएं, कभी भी ऐसे ही नहीं सो जाएं जब भी उठ जाऊंगी जब नींद पूरी हो जाएगी, नहीं, आपने 1 घंटा सोना है, 1 घंटे का अलार्म लगाइए। फिर उसके बाद उठ के आप दुहा के नफल पढ़ें, जिसको हम अपनी जुबान में चाश्त के नफल कहते हैं। ठीक है, अब ये आपने इससे डेकोरेट किया अपना टाइम जो आपका इशराक से लेके जुहर तक का है, और ये आप जुहर से 10-15 मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं, इसी को सलातुल अव्वाबीन भी कहते हैं। ये आप 2 से 8 तक जितने भी आप नफल पढ़ना चाहें, चलिए 2 तो पढ़ ही लेना। ठीक है, अब आपका जब जोहर का टाइम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आपने हल्का एक शावर ले लिया, हल्का सा नहा लिया, चेंज कर लिया, अब आपने जोहर पढ़नी है, मिसवाक ज़रूर करें इस टाइम पे, क्योंकि जो आप मिसवाक से जो हदीस में हमें फवायद उसकी फजीलत बताई जाती है, वो टूथब्रश की बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपने जोहर से पहले ही आपने घर को भी जो समेटना था, जो आपने अगर इफ्तारी के लिए कोई चीज़ निकाल के रखनी थी, कुछ कुछ करना था, वो सब आप कर लें। दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे हैं, जोहर का टाइम तक काफ़ी आपके पास वक्त होता है। जो जोहर से असर तक का वक्त है, इसमें आपने जोहर की नमाज़ पढ़ी, सुन्नत मौकदा पढ़ी, आपने वो जिक्र किया जो आपको बताया गया है, और इस तरह से आपने अपना ये वक्त गुजारा। अब आज मैं यहाँ तक ही सिर्फ बताती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें आपको बता दूंगी तो अगर आप कर ही ना पाए तो क्या फ़ायदा। ये तो बातें आपको कई जगह पे मिल जाएंगी, ये कर लो वो कर लो, ये टाइम टेबल बना दो। अब टाइम टेबल पे अगर हमने चलना ही ना हो तो फ़ायदा क्या। उम्मीद है कल की आपको बात याद रही होगी कि असर से पहले हमने वो गैर मौकेदा 4 सुन्नतें पढ़नी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेनी है, क्योंकि हम लोगों को कहते हैं ना हमें हमारे लिए दुआ करें दुआ करें, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम की दुआ लेनी है तो उन्होंने तो दुआ दी है ऐसे इंसान को जो ये 4 सुन्नतें पढ़ता है, कि अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने आज इंशाल्लाह काम करना है। अब इसके लिए आपने पेपर पे लिख के कहीं लगा लें ताकि आपको ये याद रहे, जैसे आपने कहा कि सहरी से फजर तक का वक्त, फजर से इशराक तक का वक्त, इशराक से लेके जोहर तक का वक्त, तो उसमें आप आगे आगे फिल करते रहिएगा कि इसमें क्या क्या हमने करना है, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इंशाअल्लाह एंड ऑफ रमज़ान तक हमारे दिन भी सज गए होंगे नेकियों से इंशाअल्लाह, और हमारी रातें भी सज धज गई होंगी। घरों को सजाने का शौक है ना, अपनी जिंदगियों को सजा लें इबादत से। ये वो चांद तारे हैं जिनसे आपकी जिंदगियां सज जाएंगी, हत्ता कि हम लैलतुल कदर तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें लैलतुल कदर की इबादत नसीब फरमाना। अब इस महीने में सदका जरूर कीजिए, आजकल सदका करना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और जिन मुल्कों में गरीब मसाकीन दरवाज़ों पर रहते हैं या वैसे आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर दें, इसलिए कि यह सदका हशर के मैदान में हमारे लिए साए का काम करेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। खुद सोचें दुनिया के अंदर एक दिन भी धूप में, जो सख्त चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, उसमें एक मिनट भी धूप में खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो कहाँ 50,000 साल का दिन, उस दिन में कोई और साया नहीं होगा, सदका साया बनेगा। लिहाजा अपने लिए साए का इंतजाम करना है सदका करके। ये सदका हम वैसे तो किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगर रमजान में इसका अजर बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाएगा, और ये हमारा किसी पे एहसान नहीं है कि हम उसको दे रहे हैं, बल्कि ये उसका हम पर एहसान है कि वो हमसे ले रहा है और हमें हमारे लिए साया बनाने का इंतजाम करने की तौफीक मिल रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान अपना सदका ले लेके फिरेगा और कोई सदका लेने वाला नहीं होगा। जी हाँ, हर कोई कहेगा मुझे ज़रूरत नहीं है, तब ये नेकी उठ जाएगी, तो ये नेकी भी हमेशा नहीं रहनी, या इसीलिए मैं आपको हर चीज़ का बता रही हूँ, ये हमेशा नहीं रहनी, ये नेकियों के चांस हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए इनको कीमती समझ के लें। देखिए सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ना कि खर्च करो उस रिस्क में से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाया, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फिर वो कहे यार अब तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका कर लेता और मैं नेक हो जाता। तो मरते वक्त इंसान किसी और नेकी की तमन्ना नहीं करेगा, सिर्फ ये उसकी तमन्ना होगी कि मैं सदका कर लूँ, खास तौर पे ये मेंशन किया गया। तो इससे पहले कि हम वो वक्त देखें जब हमारे जेवर, कपड़े, बैंक बैलेंस, जितने भी आपके बैंक में मिलियन डॉलर भी पड़ा हुआ ना, वो उसकी वर्थ जीरो हो जाएगी, इसलिए कि वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। देखिए ना, मिलियन डॉलर बैंक में पड़ा हुआ है और आज हम मर जाते हैं तो ये मिलियन हमारा क्या संवारेगा, क्या हमारी कब्र में हमें आराम दे देगा, क्या मुनकर नकीर के सवालात में आसानी दे देगा, क्या कब्र के अजाब से बचा लेगा, क्या आखरत के हिसाब किताब को आसान कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा, जहन्नम से आजादी दिला देगा नहीं, क्या वहां पे हशर के मैदान में ही हमारे लिए साया बन जाएगा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं इस काम में, हमारी आंख बंद होते ही इस सरमाए की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए, सिवाय वो जो हमने सदका कर दिया। इसलिए कि कब्र में ये जो नेक आमाल हैं ये हमारे हर तरफ आके खड़े हो जाएंगे अजाब कब्र से बचाने के लिए। जिनमें एक सदका भी है, सदका भी आएगा पांव की तरफ से आएगा, जब अजाब आने लगेगा ना तो ये उसको रोक देगा वहां कि नहीं तुम यहां से नहीं आ सकते, यहां मैं खड़ा हूं। सिला रहमी और सदके के बारे में ये कहा जाता है। इसी तरह नमाज, रोजा, रोजा राइट साइड पे आके खड़ा हो जाएगा, अजाब से कहेगा यहां से नहीं आ सकते, यहां मैं हूं। सर की तरफ नमाज होगी, कहेगी नहीं यहां से नहीं अजाब दे सकते, यहां पे मैं हूं। बाई तरफ जकात आके खड़ी हो जाए, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारे बॉडी गार्ड्स हैं कब्र के लिए। फिर क्या हम इनको अपने लिए मजबूत तैयार ना करें? तो अब हमें एक और बात पता चल गई कि जब हम नमाज पढ़ने लगेंगे तो हम ये भी सोचेंगे क्यों पढ़ रही हूँ। इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि ये मेरे सर की तरफ आके खड़ी हो जाइए कि मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। कब्र का अजाब बड़ी सख्त चीज़ है, क्योंकि वहां पे ना कोई औलाद होगी, ना कोई बहन भाई होंगे, ना दोस्त अहबाब होंगे, ना हमारे पास पैसे होंगे कि हम दे के खुद को छुड़ा लें, ना कोई कॉन्टेक्ट्स होंगे, सिर्फ ये हमारे आमाल ही होंगे जो हमें कब्र के अजाब से बचा सकते हैं। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इन आमाल को मजबूत बनाएं, हम इन आमाल को अपने आगे के लिए निजात का जरिया बना लें। तो उम्मीद है कि आप सारे ही काम इसी माइंडफुलनेस से, कॉन्शियसनेस से कर रहे होंगे, शहूरी तौर पे कर रहे होंगे। हर काम के वक्त आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रही हूं। जब कुरान पढ़ रहे होते हैं हलक तो खुश्क होता होगा, गर्मियां हैं, हलक खुश्क हो जाना आम सी बात है, रोजे में वैसे ही बहुत जल्दी सूख जाता है गला। तो उस वक्त आप पूछते हैं अपने आप से मुझे क्या मिलेगा इससे, या बंद करके रख देते हैं कि चलो अब क्या जरूरत है, नहीं क्या मिलेगा इससे। जानते हैं कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्र से निकलेगा तो एक रोशन चेहरे वाला उसके सामने होगा और कहेगा मुझे पहचानते हो? इंसान कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता तुम कौन हो। तो वो कहेगा मैं कुरान हूं जो तुम्हारा साथी था दुनिया में, सुभान अल्लाह मैं वो हूं जिसने तुझे दिन में प्यासा रखा। कि दिन के अंदर आप जब पढ़ते रहते हैं तो जाहिर है जो भी ऊंची आवाज में पढ़ता है अव्वल तो ऐसा पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता कि आप बस देख रहे हैं और आंखों से पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी कुछ आवाज के साथ पढ़ना चाहिए, कम से कम आपके कानों तक आवाज जाए, तो उससे ही गला खुश्क होता है ना। तो उस दिन कहेगा मैं वो था जिसकी वजह से तू दुनिया में प्यासा रहता, और मैं वो हूँ जिसकी वजह से तू रातों को जागता था, यानी तू जो जो रातों में जगाए रखता था। इसका मतलब रात को कुरान पढ़ना ये भी बड़ी फजीलत है और दिन में भी पढ़ना बड़ी फजीलत है, खास तौर पे रोजे में पढ़ना। तो तब याद कर लिया करें और गौर से देखा करें इस कुरान को कि ये वो है जिस जो उस दिन एक शक्ल में होगा, और फिर ये मुझे ये कहेगा और ये दिन याद दिलाएगा जब मेरे गले में खुश्की थी और मैं फिर भी इसको पढ़ रही थी। वो कहेगा हर कोई अपनी तिजारत के पीछे होता है और मैं आज हर ताजिर को छोड़ के तेरे लिए हूं, यानी लोग अपनी अपनी दुनिया के पीछे लगे लेकिन तूने मेरे साथ वक्त गुजारा था। तो ये कुरान बोलेगा, ये सोच सकते हैं आपके इसको अल्लाह ताला आवाज देगा, ये बोलेगा, ये हमें बताएगा और इन दिनों को याद कराएगा। तो वो कहता मैं सब कुछ छोड़ आया हूं, मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तूने मेरा साथ दिया दुनिया के, हमने इसके साथ जब वक्त गुजारा होगा दुनिया में तभी तो ये कहेगा वहां। तो तब उस इंसान को लेफ्ट हैंड में बादशाहत दे दी जाएगी और राइट हैंड में हमेश की दे दी जाएगी, और उसके सर पे वकार का, इज्जत का ताज रखा जाएगा, उसके वालदैन को उम्दा पोशाकें पहनाई जाएंगी। ये है ये कुरान जो हम पढ़ते हैं, और पढ़ के अगर थकते भी हैं तो उसके ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए, क्योंकि ये नेकी भी हमेशा नहीं रहेगी। आज बिखरी पड़ी है हमारे सामने। यकीन करें, कभी दिल चाहता है मैं आपको सारी बातें एक दिन ही बता दूं, लेकिन इस वजह से नहीं बताती कि फिर उनका बताना कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि ना आप कर सकेंगे और वो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप इसलिए हम चल रहे हैं ताकि हर दिन पिछले से बेहतर हो। तो हर दिन उनको अप्लाई करना है, जो आज सुन लिया ना, इसको आज अप्लाई करेंगे तो कल फिर हम और एडवांस, एक और स्टेप आगे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट डे एक और स्टेप आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह करके हम आगे आगे चलते जाएंगे। आज की जो दुआ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दुआ है। अब आप कहेंगे हर दुआ को मैं कह देती हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए सुभान अल्लाह, इसी को तो कहते हैं मेरा रब कितना रहीम और कितना करीम है, कि हर चीज़ के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हमें शायद पता भी ना हो, इन उनकी इतनी फजीलतें बता दी गई, इतनी उनकी बरकतें बता दी गई कि दिल करता है सारी चीज़ें कर ले, कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन हर एक की हिम्मत अलग है, जो जो कुछ भी कर सकता है वो उतना ही करे, मगर पता होगा तो कर सकेंगे ना। तो आज की जो दुआ है ना, ये सैयदुल इस्तिगफार कहलाती है। सैयदुल इस्तिगफार का मतलब क्या, इस्तिगफार की जो दुआएं हैं उन सब की सरदार है ये दुआ, सुभान अल्लाह। और ये ऐसी दुआ है, अब देखिए जरूरत हमारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके ऊपर भी हमारे लिए सुभान अल्लाह अजर रख दिया है। और वो ये है कि अगर इंसान ये दुआ पढ़ता है सुबह को, सुबह शाम की दुआओं में भी है, और हमारी वेबसाइट पे सुबह शाम की दुआएं हैं मौजूद, आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर इंसान सुबह को ये पढ़ता है ना, तो अगर उसी दिन मर गया तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अगर रात को पढ़ता है, जैसे शाम में आपने असर के बाद पढ़ी और उसके बाद सुबह तक के बीच में अगर कोई फौत हो जाता है तो वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुबह पढ़ी तो सारा दिन में इसी वक्त फौत हो जाए जन्नत में दाखिल होगा, शाम को पढ़ी तो सारी रात में किसी वक्त फौत हो जाएगा जन्नत में दाखिल होगा, सुभान अल्लाह। तो हालांकि है ये इस्तिगफार, लेकिन कितना बड़ा इस इस्तिगफार का मकाम है। और क्या चाहिए हमें, हमारे सुबह शाम में किसी वक्त भी दुनिया से चले जाएं जन्नत में दाखिल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी, नहीं कोई इलाह मगर तू, तूने मुझे पैदा किया, वाना आब्दुका, और मैं तेरा बंदा हूँ ए अल्लाह, वा अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु, और ए अल्लाह मेरी जितनी इस्तात है, जितनी हिम्मत है, उसके मुताबिक मैं तुझसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ, ला जितनी मेरी हिम्मत। अल्लाह अकबर, आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। और ये भी बात इसमें बड़ी प्यारी है, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन बुरी चीज़ों से जो मैंने की हैं। यानी इंसान इतराफ़ करता है कि अल्लाह मुझसे बुराइयाँ हुई हैं, मैंने खुद ही की हैं, किसी और के ऊपर नहीं इल्ज़ाम ठहरा रहा। अबू उलक बि नियामतिका अलैया व अबू उबी जम्बी, ए अल्लाह जो तूने मेरे ऊपर नेमतें की है ना, मैं मानती हूँ कि तूने मेरे ऊपर बड़ी ही नेमतें की, और मैं अपने गुनाहों का भी इतराफ करती हूँ, मैं वो भी मानती हूँ कि मेरे से गुनाह हुए। अब क्या है, फ़ाग़फिर ली, ए अल्लाह बस मुझे माफ कर दे, फ़इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, क्योंकि गुनाहों की बख्शिश कोई और नहीं कर सकता सिवाय तेरे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ, इसका माना समझ के इस दुआ को मांगे। और वाकई नेमतें तो इतनी हैं कि हम पिछली नेमतों पे जो हमें मिल चुकी हैं उन्हीं का शुक्र अदा करते रहें, तो कुछ और मांगने का वक्त ही नहीं मिलेगा, उनका भी शुक्र नहीं अदा कर सकते। इसके बावजूद हमारे गुनाह हैं और हम अपने गुनाहों को मानते हैं और अल्लाह ताला से बख्शिश चाहते हैं। याद रखें, दुनिया में जो मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं ना, वो भी हमारे गुनाहों की वजह से, और आखरत में भी जो मुसीबतें आएंगी वो भी गुनाहों की वजह से, कब्र का जो अजाब है वो भी गुनाहों की वजह से, हशर के जो अजाब है वो भी हमारे गुनाहों की वजह से। तो ये गुनाह जो है ना, बड़ी मनहूस चीज है, ये है नहुसत वाली चीज। अब इन गुनाहों से फरार कैसे है, इन गुनाहों से कैसे हम बच सकते हैं कि हम या तो माफी मांग ले या फिर सजा के लिए तैयार हो जाए। या तो अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया ना इस दुनिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें माफ कर दे, हमारे कबीरा सगीरा सभी गुनाह माफ कर दे, बंदों से जो हमने ज्यादतियां की वो भी माफ कर दे, और उसके हकूक में जो कमियां की हैं और ऑब्वियसली की हैं अल्लाह वो भी माफ कर दे, हर तरह के गुनाह माफ कर दे। वरना ना यहाँ पे माफी मांगी, ये माफी हमारी जरूरत है पता है, ये ऑप्शन नहीं है। ना मांगी तो फिर भुग देंगे, या तो मौत के वक्त भुग देंगे उस वक्त की सख्तियों की सूरत में, या कब्र के में भुग देंगे, या हशर के में भुग देंगे। कौन सी जगह है जहां पे हम चाहते हैं कि हम भुगत सकते हैं, जहां पे हम समझते हैं कि यहाँ पे अजाब आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई भी जगह ऐसी नहीं। हम तो कोई जगह की भी सजा नहीं सह सकते, और इवन दुनिया की नहीं सह सकते। यहाँ पे जरा सी मुसीबत आ जाए, जरा बीमारी आ जाए, जरा बच्चे को कुछ हो जाए, हमारी कैसी जान जाती है। तो हम कहीं पे भी ए अल्लाह तेरी पकड़ नहीं सह सकते, तो हम हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह तू हमें माफ कर दे। तो ये माफी हमारी जरूरत है, इसलिए बहुत ही खुशू के साथ, ऐसे नहीं अस्तगफिरुल्लाह 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 की तस्बीह आप करते रहे, नहीं। ये जो मैंने औकात आपको बताए, खास तौर पे तहज्जुद का वक्त और खास तौर पे इफ्तार से पहले अपने लिए माफी मांग, अल्लाह तू माफ कर दे, वरना हम तो खसारे में, अल्लाह हम तो बर्बाद हो गए फिर अगर तूने ना माफ किया। और आज का जो जिक्र है ये भी ऐसा जिक्र है जो गुनाहों को झाड़ता है, ऐसे झाड़ता है ये जिक्र, इतना प्यारा जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया इसको लाजिम कर लो, लाजिम लाजमी, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें कि ये लाजिम पकड़ लो इस जिक्र को। इसलिए ये जिक्र जो है ना ये गुनाहों को इस तरह झाड़ता है जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ देता है। आप देखते हैं खिजा में कैसे पत्ते गिर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, इसी तरह ये जिक्र है कि ये इंसान से गुनाहों को दूर कर देता है, हमारे गुनाह झड़ जाएं और क्या चाहिए। तो ये जिक्र क्या है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, किसी को आगे किसी को पीछे भी कह सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैं आपको जिक्र बताती हूँ ना, ये जिक्र आप चलते फिरते, वजू है या बगैर वजू के हैं, पाकी है या नापाकी है, अब औरतें कहते हैं हम पीरियड्स में क्या करें, नापाकी में भी आप हर हाल में ये जिक्र कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं, खड़े हुए भी कर सकते हैं, खामोश क्यों रहे, इतनी देर खाना हम बना रहे होते हैं चुप करके बना रहे होते हैं, क्यों मुंह को चलाते रहे। ये जिक्र क्या किसी को याद करने की जरूरत है, सबको आते हैं, सिवाय आप टॉयलेट में जिक्र नहीं कर सकते, बाकी हर जगह कर सकते हैं। तो जुबान पे जारी रखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में वही बात दोहराऊंगी कि कश्ती मजबूत बांध लें, इसलिए कि समंदर बड़ा तूफानी है, अमल बहुत सारे इकट्ठे कर लें, इसलिए कि हमारा सफर बहुत लंबा है। अल्लाह ताला हम सबसे ये सारे नेकी के काम जिनसे वो राजी हो जाता है वो हमसे करा ले, हमें तौफीक दे दे, हमें सुझा दे, हमें याद दिला दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।